Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
उसे पहले हमको पता नहीं था और टेस्ट किया तो 400 तब तो फिर एक माता जी जो है हमको सुबह सुबह करेले का रस लेकर आती थी, समझिए आप ये पी लीजिए हैं। एक दिन पहले तक वही माता जी आमरस पिलाती थी, यही प्रेमपुरी में हो मैं सच बोल रहा हूं, ये गप नहीं कर रहा हूं। एक दिन पहले तक वो माताजी क्या करती थी, आम रस, हापुस आम के रस है, पैरी आम के रस पिलाती थी। जब पता लगा कि शुगर जो है 400 पहुंच गया है, दूसरे दिन से वह करेले का रस लाने शुरू कर दिया है, देख लो है। अब वो भी तो पीने ही पड़ा कि नहीं बोलो, जब पीने लगे तो मुख बिगड़ गया, आंख बंद करके पी लीजिए स्वामी जी कहती है माता जी। बोले संबोध्यान रसालयम, वो करेले के रस की तरह कड़वा नहीं है, है? एकदम रस भरा हुआ है। भगवान शिव के चरणों के जो ध्यान है, वो ध्यान रूपी सरोवर है, वो इतना आनंद का है कि वहां कोई भी दुख नहीं है। रसालयम, भागवत का मंगलाचरण ही वेदव्यास ने यही से शुरू किया है। पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका, कीदृशम भागवतम रसमालयम भागवतम पिबा। आलयम लय पर्यंतम भागवत रस पीवा, जब तक न मरो तब तक पीते रहो, ये मर भी जाओगे तो भी पीना नहीं छोड़ना। प्रलय जब तक न हो, लय न हो, क्योंकि मरना एक अलग चीज है, लय होना एक अलग चीज है। मरना तो परमात्मा से अलग होकर अलग ही फिर जन्मना है, लय होना हो गए परमात्मा से एक हो गए बस खत्म हो गए। जब तक परमात्मा से एक नहीं हो गए तब तक भागवत रस को पीना नहीं छोड़ना भैया। पिबत भागवतम रसमालयम लय पर्यंतम आलयम पिबत भागवत रसम, है कैसा रस है, बोले बस सुखमुखादमृतम है, इतना रसीला है कि सुखदेव जी ने भी उसका पान किया है। और सुखदेव जी ने पान किया और तृप्त हुए और उन्हीं से बचा हुआ यह रस है। सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, इसलिए संबोध्यान रसालयम, ये भगवान शिव के जो ध्यान है वह भी कम नहीं है। चाहे भागवत का रसपान करो, चाहे संबुद्ध ध्यान का रसपान करो, दोनों रस क्या है, नित्य है, हाँ लय पर्यंत पान करने योग्य है। क्योंकि सुर मुनि स्वांताम्बुजाताश्रयम, सुर मुनि, सुर माने देवता, मुनि माने ऋषि लोग, ब्रह्म चिंतन करने वाले, मनन करने वाले। मुनि शब्द का अर्थ होता है मनन करने वाले। श्रवण करने वाले तो श्रोता होते हैं, मनन करने वाले मुनि होंगे। श्रवण करने वाले श्रोता और मनन करने वाले क्या होंगे, मुनि। मननात मुनि, मनन करो। सुर मुनि स्वांतः, उन लोगों की अंत मनी हृदय रूपी अंबुज कमल का आश्रय है। कौन? संबुद्ध्यान सरोवर, क्योंकि कमल कहां खिलते हैं? सरोवर में। संबुद्ध्यान सरोवर में कौन से कमल खिलेंगे? कौन से कमल खिलेंगे भाई? मुनि स्वांत, मुनियों के हृदय के कमल संबुद्ध्यान सरोवर में ही खिलेंगे, इसलिए वो सरोवर की शोभा है। जिस सरोवर में संबुद्ध्यान में ऋषि मुनि और देवता लोग भी अपने मन को लगाए रहते हैं, इसलिए सब ऋषियों का सब मुनियों का मन रूपी कमल वही संबुद्ध्यान रूपी सरोवर में खिल रहा है। उसी सरोवर में हे तुम, हे मन राजांश, तुम भी वहीं जाओ, तुम भी वहीं जाओ। देखने में भी बड़ा सुंदर है, कमलों से भरा हुआ है संबुद्ध्यान सरोवर। कौन से कमल से? देवताओं के हृदय रूपी कमल भी वहीं खिल रहा है, मुनियों के हृदय रूपी कमल भी वहीं खिल रहे हैं, सब वहीं हैं। तुम भी वहीं जाओ। नित्यानंद रसालयम सुर मुनि स्वांताम्बुजाताश्रयम स्वच्छम। संबुद्ध्यान सरोवर में कोई विकार नहीं है, स्वच्छम। स्वच्छ इसलिए कि विजातीयता को कोई संबंध नहीं है। थोड़ा वेदांत की चर्चा करते, विजातीय संबंध हुआ कि उसमें दोष आ गया, प्रकृति और प्राकृत संबंध हुआ कि उसमें विकार आ गया। और क्योंकि संबुद्ध्यान इतना स्वच्छ है, सत चित आनंद, यही संबुद्ध्यान सरोवर के जल की विशेषता है, जिसमें केवल सत मात्र है, दूसरा कुछ मिश्रित है ही नहीं, विजातीयता है ही नहीं। जिसमें केवल चिन्ह मात्र है, जड़ का कोई अंश रंच कण भी नहीं है, सच्चिद, और जिसमें आनंद है, दुख की छाया भी नहीं है, है? तो इसलिए स्वच्छ है संबुद्ध्यान सरोवर। कैसा है? स्वच्छ है, है? और स्वच्छ इसीलिए वहां सुर और मुनियों के हृदय रूपी कमल खिल रहे हैं। स्वच्छ है इसीलिए वहां नित्य आनंद रस से भरा हुआ है वो जल। स्वच्छम सद्विजसे वितम, वहां तुम अकेले नहीं रहोगे, द्विज सेवितम, और भी बहुत से पक्षियां हैं वहां। द्विज शब्द का अर्थ पक्षी है, समझे कि नहीं? द्विज शब्द का अर्थ पक्षी है, दो बार जिसका जन्म हो उसका नाम द्विज। एक बार जन्म होता है अंडे के रूप में और दूसरा जन्म अंडे से फूटकर तब होता है, इसलिए पक्षी का नाम द्विज। यावत अंडज जीवों का नाम द्विज है, समझे कि नहीं? और तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम भी द्विज है, क्योंकि तुम्हारा भी दो बार जन्म होता है, एक बार मां के गर्भ से, दूसरी बार गायत्री मंत्रों की दीक्षा से। मंत्र दीक्षा यदि नहीं है तो तुम शूद्र हो, बस। और यदि मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई है तो तुम द्विज हो। जब तक दीक्षा ग्रहण नहीं होगा तब तक वह द्विज नहीं कहलाएगा। दीक्षा ग्रहण करने के बाद उसका दूसरा जन्म आरंभ होता है, क्योंकि मंत्र से उसका जन्म आरंभ हुआ, इसलिए द्विज। ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, उनको द्विज कहते हैं, क्योंकि ये तीनों का उपनयन संस्कार होता है, मंत्र दीक्षा होती है, दीक्षा विधि होती है। और माताएं फिर पूछेंगे हमसे कि महाराज हम लोग द्विज हैं कि नहीं। पुरुषों का तो दीक्षा उपनयन संस्कार जनेऊ संस्कार होता है, इसलिए वो तो द्विज हो गए, उनका तो दो बार जन्म हुआ, हमको तो किसी ने जनेऊ नहीं पहनाया, तो हम तो द्विज नहीं हुए ना महाराज। हाँ, अरे भाई द्विज की पत्नी ही द्विज है। हाँ, और हमारे शास्त्र ने अन्याय नहीं किया है बाबा, कोई उपनयन संस्कार करके द्विज बना हुआ हो और वह शादी करता है तब जाकर वह पूर्ण होता है वह द्विज। जब तक शादी नहीं करेगा वो हाप है, और शादी के बाद तब वो पूरा होगा। इसलिए पत्नी को हम लोग अर्धांगिनी कहते हैं। हमारा भारतीय संस्कृति क्या कहता है पत्नी को? अर्धांगिनी। और पत्नी अर्धांगिनी हो गई तो आधा अंग उसका हो गया, तो आधा जनेऊ तो उसके कंधे में भी आ गया कि नहीं? तो ये धागे के जनेऊ को लटका कर क्यों समस्या मुसीबत लेते हो? उन्हीं को भीरने दो, उन्हीं को लटकाने दो, तुमको समस्या नहीं लेना है। वही जनेऊ पहनते रहें, वही निकालते रहें, हैं? और तुमको अपने आप ही द्विजत्व तो प्राप्त हो गया, शादी कर लिया तो उनके साथ अर्धांगिनी हो गई ना तुम, है? तो तुम अलग इंडिपेंडेंट क्यों जनेऊ पहनने के लिए कोशिश करते हो? जरूरत क्या है? दूसरी बात है कि महाराज हम जनेऊ नहीं पहनेंगे, चोटी नहीं रखेंगे, तो गायत्री मंत्र का जप करने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो वो तो हमारा जो पति है वो तो चोटी रखा है, जनेऊ पहना है, इसलिए गायत्री मंत्र जप करता है, हैं? अब हमको जनेऊ नहीं है, चोटिया नहीं है, तो हम गायत्री मंत्र नहीं जप कर पाएंगे। अरे बाबा, वो चोटी रखा है, जनेऊ रखा है, गायत्री जपा है, आधा जप तुमको अपने आप मिल गया। ले जी, आधा जप तुमको अपने आप मिल गया। तो हमारे धर्मशास्त्र ने सनातनी धर्मावलंबी महिलाओं पर कोई अन्याय नहीं किया है, जबकि आज एक स्वर से आक्षेप आ रहा है। इन रहस्यों को नहीं समझते हैं तब कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार क्यों नहीं है। हम कहते हैं कि गायत्री मंत्र जपने की आवश्यकता क्यों है? बोले गायत्री मंत्र जपेंगे तो उसका पुण्य प्राप्त होगा, और नहीं जपेंगे तो पुण्य प्राप्त नहीं होगा। तुम नहीं जपोगे, तुम्हारा पति जपेगा, तो आधा तुमको मिल ही गया। देखो, वैदिक सनातन धर्म की व्यवस्था ऐसी है। इस उदात्त सनातन धर्म की व्यवस्था पर ध्यान न देकर, और ये उदारता और किसी भी धर्म में नहीं है। आप ध्यान पढ़ लो ना, मुसलमान ने यह अधिकार दिया है तुम्हें अर्धांगिनी का? किसी महिला को अर्धांगिनी का संबोधन किया है मुसलमान ने? बोलो, किसी भी महिला को मुसलमान ने पत्नी को धर्म पत्नी कहा है, संबोधन दिया है? ना क्रिश्चियनों ने किया है, ना बुद्धिस्टों ने किया है। ये तो वैदिक सनातन धर्म की विशेषता है। हाँ, इसलिए हमारे धर्मों में तो महिलाओं को आंदोलन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, और अतिरिक्त अधिकार मांगती हैं तो वह अनावश्यक मुसीबत ही मोल ले रही है, बात न समझकर ही है। इसलिए कहा संबोध्यान द्विज, तुम तो स्वतः द्विज हो गए हो भाई। हाँ, द्विज पत्नी स्वतः द्विज हो गया, द्विज पुत्र स्वतः द्विज नहीं होता है, ध्यान देना। द्विज का पुत्र स्वतः द्विज नहीं होगा जब तक उपनयन संस्कार नहीं होगा, लेकिन द्विज पत्नी स्वतः द्विज हो गई। बस नित्यानंद रसालयम सुम सुरमुनि स्वांताम्बुजाताश्रयम् स्वच्छम सद्विज सेवितम्। ये सब किसके विशेषण है, ध्यान देना। संबुद्ध्यान सरोवर के विशेषण है। जिस सरोवर में अपने मन रूपी राजहंसों को जाने के लिए शंकराचार्य जी प्रेरणा दे रहे हैं, हे मन राजहंस, तुम नित्य संबुद्ध्यान सरोवर में जाओ, नहीं छोड़ना शंभू का ध्यान, शिव जी का ध्यान। कैसा है वो सरोवर? नित्यानंद रसालयम, दुख की छाया भी नहीं पड़ेगी, वहां है ही नहीं। सुरमुनि स्वांताम्बुजाताश्रियम, वाह क्या सुंदर दृश्य है वहां, क्योंकि बड़े मान सरोवर के चारों तरफ देवता नित्य स्नान करने के लिए आते हैं, ऋषि मुनि वहां बैठकर ध्यान और समाधि लगा रहे हैं। उस सरोवर का आश्रय, सरोवर ऋषियों का देवताओं का आश्रय ही वो सरोवर है। वे ऋषि मुनि कभी सरोवर को छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए ऋषि मुनि संबुद्ध्यान को छोड़कर कहीं नहीं जाते। ऋषियों का मन शिव ध्यान को छोड़कर विषय ध्यान में नहीं जाता है, और हमारा मन ज्यादा से ज्यादा विषय ध्यान करता है और सम्मुख ध्यान में तो जाता ही नहीं है, इसलिए ये दुख का कारण बनता है। और कैसा है वो सम्मुख ध्यान सरोवर? स्वच्छम सद्विज सेवितम कलुषरित, जीवन जन्म जन्मांतर के जो कालुष्य है हृदय में, जीवन में, उस कालुष्यता को हृत हरण करने वाला है। कालुष्य हृत, कालुष्यम माने दोष पाप। जैसे एक बार सरोवर में डुबकी लगाओ मान सरोवर में, तो हमारी सनातन धर्म की मान्यता क्या है? जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। तो सरोवर की विशेषता क्या हो, ये भौतिक सरोवर की विशेषता कैसी रही? कलुषरित। और इसी तरह संबुद्ध्यान सरोवर की विशेषता क्या है? कलुषरित, जिसका भगवान शिव के चरण में ध्यान टिक गया उसके सारे पाप खत्म हो गए, कलुषरित। सद्वासना विस्कृतम तब जब कलुष का हरण होगा, दोष हरण होंगे, अभावना असंभावना विपरीत भावना है, जगत वासना देह वासना, ये सारी वासनाएं हैं हृदय में, जीवन में, जो जीवन का एक कालुष्य है, इन्हीं वासनाओं के चलते जीवन दोष युक्त हुआ है। और इन जैसे कपड़े में लगे हुए दाग को साबुन और पानी के माध्यम से धोया जा सकता है, इसी तरह जीवन में लगे हुए इन कालुष्य को धोने का एकमात्र साधन क्या है? संबुद्ध्यान सरोवरम, उसमें लगाओ गोता, बस सारे कालुष्य हृत धोएंगे चले जाएंगे, वो सब स्वच्छ होगा। तब क्या होगा? सद्वासना विस्कृतम, अभी हमारे मन में असद वासना भरा हुआ है। असद वासना माने जगत वासना, और जीने की इच्छा, भोगने की इच्छा, पाने की इच्छा, ये क्या है? जगत क्या है? असद है। और जगत की वासना असद वासना है। और परमात्मा अर्थात मोक्ष उन्मुक्त होने की इच्छा, ये सत वासना, क्योंकि जगत में परमात्मा ही एक सत वस्तु है, परमात्मा के अतिरिक्त और सब असत हैं। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा में एक मंत्र आता है, यज्जाग्रतो धूरमुदैति दैवं तत्सुप्तस्य तथैवैति దూరంగమం జ్యోతిషాం జ్యోతిరేకం తన్మే మన శివ సంకల్పమస్తు. హే పరమాత్మా, ఆప్కి కృపా సే ఏక్ బడియా సాధన ముజే ప్రాప్త హువా. ఉస్ సాధన కా నామ్ హే మన్. అప్నే మేరా జీవన్ దియా, జీవన్ కే సాథ్ సాథ్ మే జీవన్ కే లియే ఏక్ సాధన్ మన్ భీ దియా హే, జిస్ సాధన్ సే మే సంసార్ కో భోగ్ భీ సకూ ఔర్ జిన్ సాధనో సే మే బంధన్ సే ముక్త భీ హో సకూ. మన ఏవ మనుష్యాణం కారణం బంధ మోక్షయో, బంధాయ విషయాసక్తి మోక్షం నైర్ విషయకం మన. వై మన్ విషయ మే ఆసక్త హువా తో బంధన్ కా కారణ బన్ జాతా హై. వై మన్ నిర్విషయ మే ఆసక్త హువా మోక్ష కా కారణ హోగా. నిర్విషయ మానే సద్వాసన, జిస్కీ బాత్ యహాన్ శంకరాచార్య కహతే హై. సత్ మానే బ్రహ్మ, సత్ మానే పరమాత్మా, సత్ మానే ఆత్మా, సత్ మానే అప్నా స్వరూప్. ఉస్సే అలావా సబ్ అసత్. తన్ మే మన శివ సంకల్పం అస్తు, ఐసా జో మన హై అనాదికాల్ సే ఆజ్ తక్ అశివ సంకల్ప కర్నే కే కారణ యు బార్ బార్ జన్మ ఔర్ మృత్యు మే పడా హువా హై, 84 లాఖ్ యోని మే భటక్ రహా హై ఔర్ జన్మ దుఃఖం జరా దుఃఖ ఆది దుఃఖ మే యే పడా హువా హై. ये सारे कारण मन अशिव संकल्प करने, अशिव माने जगत, शिव माने परमात्मा आत्मा. तो वो मन अब आपकी कृपा से अशिव संकल्प छोड़े और नित्य निरंतर शिव संकल्प करे. शुक्ल यजुर्वेद माध्यंदिनी शाखा रुद्री का ये जो मंत्र है शिव संकल्प सूक्त, 6 मंत्र का सूक्त है. लगभग उसी तरफ संकेत करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं संबुद्ध्यान सरोवरम. ये सद्वासना विस्कृतम, तुम उस संबुद्ध्यान रूपी सरोवर में एक बार गोता लगाओगे तो तुम्हारे हृदय के जगत विषयक वासना कालुष्य खत्म हो जाएंगे और वहां सद्वासना विस्कृतम मोक्ष रूपी वासना, मोक्ष की इच्छा का आविष्कार होगा. ये जल की ये जादू है, चमत्कार है. समुद्यान सरोवर के ये चमत्कार विशेषता है कि उसमें गोता लगाते ही असदवासना कालुष्य सब खत्म हो जाएंगे और सदवासना मोक्ष की तीव्र इच्छा वो प्रकट होने लग जाएगा. సంబోధ్యాన సరోవరం వ్రజ మనోహంసావతంస్తం స్థిరం కిం చుద్రాలయ శుద్రాశ్రయ పల్వల భ్రమణ. ఐసా స్థిరం, ఐసా సంబోధ్యాన, ఇతనా విశాల, ఐసే విశేషణో సే యుక్త, इतना बढ़िया मान सरोवर समुद्यान सरोवर होते हुए वहां न जाकर तुम क्षुद्रालया पलवला, ये संसार के छोटे मोटे ताल तलैया में क्यों भटकते हो. क्षुद्रालया, क्योंकि संसार का विषय तो क्षुद्र है ना. समुद्यान सरोवर के सामने चुल्लो भर पानी के गड्ढे, वो तो क्षुद्र ही है. और हम करते क्या है कि वही चुल्लो भर पानी वाला जो गड्ढा है उसी गड्ढे को खोजते घूमते हैं. कहीं थोड़ा सा विषय मिल गया तो वाह क्या क्या मिल गया, बहुत कुछ मिल गया. देखते देखते विषय गायब हो गया, बैठ के रोने लग गए. थोड़ा सा मान मिल गया, मक्क हो गए, एकदम मस्त हो गए. थोड़ा सा धन मिल गया, मस्त हो गए. ये सब क्या है, संसार के मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत ये सब क्या है, क्षुद्रालय छोटे मोटे ताल तलैये है. ये तो कभी भी सूख जाएंगे भैया, कभी भी सूख जाएंगे. आज तुमको थोड़े से बारिश हुई और देख लिया पानी, उसी के सरोवर के सामने, उस गड्ढे के सामने घर बनाकर मत बैठना भैया. है? क्या सुंदर बात कह रहे हैं। मानसून के चौमासा में बारिश हो गई, एक गड्ढे में पानी भर गया, बोले आहा क्या सुंदर पानी का सरोवर है, यहीं घर किनारा में घर बना के बैठ जाए, पानी की कमी नहीं रहेगी। तो वो पानी तो बारिश के चलते था, बारिश खत्म होते ही वो गड्ढे के पानी सूखने में कितना देर लगेगा भैया, बाद में फिर रोने लगोगे कि नहीं। इसलिए छोटे मोटे तालाब के सामने घर बनाकर बैठना नहीं, बैठना ही हो तो सम्बुद्ध ध्यान सरोवर के किनारे अपना नित्य निवास स्थान बना लो। है ये देख लो, किम क्षुद्राश्रय पल्वला भ्रमण सं जाताश्रमम प्रप्स्यति। इधर उधर भटक के थकान, श्रमम भ्रमण संजात श्रमम, तुम दुखी क्यों होते हो? बोले क्योंकि तुमको भटकना पड़ रहा है संसार के छोटे मोटे तल तलैया में, दो चार पैसा लाख दो साल करोड़ दो करोड़ के चक्कर में भटकना पड़ रहा है, इसीलिए जो तुमको ये परिश्रम हो रहा है, है? सम्बुद्ध्यान सरोवर में जाओ तो निधि नाम त्वाम निधिपति गुंग हवामय। कुबेर को भी सारा तीनों लोक का साम्राज्य देने वाला तो सम्बुद्ध्यान सरोवर है। बोलो कुबेर को ये तीनों लोग साम्राज्य कहां से प्राप्त हो? वही शिवजी ने तो दिया है, है? यद्रिद्धिम सुत्रामणो बरद परमोच्चैर अपिशति अधश्चक्रे बाण परिजन विधेयस। बाण बाणासुर ने यद्रिद्धिम सुत्रामणो, इंद्र का स्वर्ग के साम्राज्य को भी तुच्छ करने की साम्राज्य प्राप्त कर ली। किसने? बाणासुर ने। कहां से प्राप्त कर लिया? सम्बुद्ध्यान सरोवर, भगवान शिव की आराधना से ही वो सब प्राप्त कर लिया है उसने, बाणासुर ने। इसलिए ये मन राजहंस तुम इधर उधर मत भटको। नित्यानंद रसालयम सुर मुनि स्वांताम्बुजाताश्रयम स्वच्छं सद्विज सेवितम कलुसरित सद्वासना विस्कृतम संबुद्ध्यान सरोवरम ब्रजमनो हंसावतंस्तम स्थिरम किं क्षुद्राश्रय पल्वल भ्रमण सन् जाताश्रमम प्राप्स्यसि आनंदामृत पूरिता हर पदाम भोजालवालोद्यता थैर्योपग्नमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता उच्चैर्मानस कायमान पटलिम आक्रम्य निष्कल्मषा नित्याभीष्ट फल प्रदा भवतु मे सत्कर्म संवर्धिता। अब शंकराचार्य जी, किसान खेडूत बोलते हो ना आप लोग, अपने आप को किसान की भूमिका में हैं, अपने आप को किसान की भूमिका में पहुंच गए वो, और कहने लगे कि तुम बढ़िया खेती करो भैया। है कौन सी खेती करना है? यहां जो कहा है वही कहो, भक्ति लतिका, भक्त लतिका। है देखो, तुमको दूधी खानी हो तो दूधी पेड़ में लगता है कि लता में? हाँ। करेला खानी हो तो, परवल खाना हो तो, टिंडोला खाना हो तो बोलो कहां किसमें लगते हैं ये फल? तमाम है भक्त लतिका, लता में लगते हैं। तो बोले लता की खेती करेंगे हम तो भाई। कौन सी लता की? बोले भक्ति लता की। इसकी व्याख्या कल करेंगे, समय तो हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्या पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।